Krishna. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtham Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Twang Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Nitangscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapto Kanchana Gaurangi Radhe Vrinda Vaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranam Mami Hari Priye Bancha Kalpa Tarubhascha Kripa Sindhu Bhaye Vacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ishvaraha Parama Krishna, Sachida Anadir Adir Govindaha. Sarvakarana Karanam Shri Shri Brahma Samhita Ki Jai Hare Krishna Kal main imtihan ke bare mein bola tha ki Monday ko pariksha hoga to us bare mein main aapko syllabus thoda bata raha hu कि पहले जो 1 से 28 श्लोक जो है एक श्लोक पहला श्लोक बहुत ही जरूरी है क्यों क्योंकि उस श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान कौन है श्री कृष्ण कौन है जो श्लोक हम अभी-अभी गाया था वो श्लोक कौन सी श्लोक है ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्वकारण कारणम और उसकी बाद ब्रह्मा जी ने भगवान की धाम के बारे में वर्णन किया भगवान का धाम कैसे है गोलोक वृंदावन कैसे हैं वो जगह कैसी है भगवान कैसे वहां विराजमान हैं और उसकी बाद ब्रह्मा जी बताया कैसे उन्होंने इस धाम की धाम को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन कर सके थे वैसे आपको पता है जो गायत्री ब्रह्मा जी गायत्री मंत्र प्राप्त हुए थे भगवान से और गायत्री जप करने से भगवान को दर्शन उनको मिला था गायत्री मंत्र उच्चारण के कारण ये ही है गायत्री हम क्यों जपते हैं गायत्री जो ब्राह्मण है वो गायत्री जपते हैं गायत्री जप करने का उद्देश्य क्या होता है ताकि हम भगवत धाम प्राप्त हो सकते हैं भगवान के पास वापस जा सकते हैं और भगवान के पास वापस जाने के बाद ब्रह्मा जी जब भगवान को दर्शन किए दर्शन करने के बाद ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति करना शुरू किया वो स्तुति 29 श्लोक से शुरू हुआ था तो हमारा जो विचार होगा वो प्रधान रूप से 29 श्लोक से ही होगा। हाँ, हम नहीं चाहते हैं कि आप ये स्टडी वो श्लोक को स्टडी किए करें जो श्लोक के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। मैं तो ये पूछूंगा कि ब्रह्मा जी को उस वो जो 1 से 28 तक जो श्लोक हैं या 2 से 28 श्लोक में उसके बारे में मैं ज्यादा से ज्यादा ये पूछूंगा कि ब्रह्मा जी को कैसे भगवत धाम को दर्शन हुआ था, भगवान भगवत धाम को दर्शन करने का ब्रह्मा जी लायक कैसे बने, कैसे उसके दर्शन करने का योग्यता प्राप्त हुए थे। और कल हम कौन से श्लोक तक पाठ किया था? 35 श्लोक तक। हाँ, याद है आपको? पास सबके पास किताब है? हाँ, किसके पास ब्रह्म संहिता नहीं है? नहीं है। अच्छा, और कौन? जो ऊंचा से हाथ उठाइए। ओ, तो अगर ब्रह्म संहिता नहीं है तो कैसे आप स्कूल जा, किताब के बिना स्कूल जा सकते हैं? हाँ, जाने से फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये विचार करना था पहले। अच्छा, कौन कौन आपका नाम रजिस्ट्री करवाए हैं? अच्छा, कौन कौन नहीं रजिस्ट्री करवाए हैं? रजिस्ट्री नहीं कौन करवाए हैं? ये सेमिनार के लिए नाम रजिस्ट्री करवाने का हम बोला था। कौन नहीं करवाए हैं? अच्छा, नहीं करवाए तो, और जो करवाए हैं उसको ये किताब नहीं मिला, ऐसे कौन है जो रजिस्ट्री करवाए हैं परंतु किताब नहीं मिला? हाँ, क्यों ऐसा हुआ? गंगानारायण रजिस्ट्री नाम करिए किंतु बोई पाई नहीं कहना। हाँ, अच्छा ठीक है, कतगुलो बोई आछे एखाने? अच्छा ठीक है, जादे जादे नहीं दिए दो। हाँ, और किताब के लिए थोड़ा दक्षिणा देना पड़ेगा। हाँ, तो आपका जो मर्जी आप दे देना, पर शायद कतो दाम कतो ब्रह्म? हाँ, अच्छा सर, 15 रुपए है इसका मूल्य है। अच्छा, सबके पास कागज कलम है? हाँ, किसके पास कागज कलम नहीं है? तो तब कागज कलम के लिए आपको 25 रुपए देना पड़ेगा। कागज खाता कलम आछे? हाँ, ज्यादा ज्यादा कागज कलम नहीं, कागज दिए ना। मैं कल बताया था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्कूल में क्या बेगर किताब बेगर बेगर कलम कागज आप जा सकते हैं? जाते हैं कभी? तो यहां जो है क्या हो रहा है? हाँ, कल बताया था ना, ये केवल प्रवचन जैसा नहीं। हाँ, ये सीरियस स्टडीज है, अध्ययन है, शास्त्र की अध्ययन। तो कल जैसे हम विचार किया था ब्रह्म संहिता के बारे में, तो आपको समझने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है? हाँ, तकलीफ हुआ किसी को? हाँ, आप किसको तकलीफ नहीं हुआ हाथ उठाइए। जिनको तकलीफ नहीं हुआ है समझने में उन्होंने कृपा करके हाथ उठाइए। हाँ, और जिनको तकलीफ हुआ था थोड़ा बहुत आप हाथ उठाइए। कोई भी नहीं? अच्छा, बहुत अच्छा। आई एम इंस्पायर्ड। वेयर इज माई बैग? शोल्डर बैग, गिव मी शोल्डर बैग। किसको कागज लगेगा, ब्रह्म संहिता लगेगा, आप ले लीजिए। मितेश, तुमको मिला है ब्रह्म संहिता? Where is your Brahma Samhita, Chiranjeev? Hare Krishna. तो कल हम जो विचार किया था, ठीक है, वो जो ये मूल्य आप बाद में दे दीजिएगा, कलेक्ट द मनी आफ्टरवर्ड्स, डोंट वरी आफ्टरवर्ड्स. कल हम क्या विचार किया था, विचार किया था इस भौतिक जगत का सृष्टि कैसे होता है, ये विचार किया था, है ना. वो सबसे पहले हमको विचार करना पड़ेगा, भौतिक जगत का सृष्टि कैसे होता है. महाविष्णु कारण समुद्र में लेटते हैं, सोते हैं, और उनका श्वास से, जब उन कारण समुद्र में श्वास लेते हैं, तो वो श्वास लेने से क्या होता है. आप पानी के अंदर कभी श्वास लिए हैं, श्वास छोड़े हैं? हाँ. छोड़ने से क्या होता है, बुदबुद निकलता है, उद्भव होता है. तो ये जो बुदबुद है ब्रह्म, ये एक एक बुदबुद है, एक एक ब्रह्मांड. भगवान केवल उनका मुंह और नाक से ही श्वास नहीं लेते हैं, उन्होंने उनका रोमकूप जो है, वो रोमकूप से भी उन्होंने श्वास लेते हैं, और उससे जो उसके कारण जो बुदबुद सृष्टि होता है, पैदा होता है, वो एक एक बुदबुद है, एक एक ब्रह्मांड. और उस ब्रह्मांड में तब भगवान महाविष्णु तब गर्भोदक्षाई रूप में, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, करके अपना शरीर से पानी निकल के, जैसे हमारा शरीर से स्वेद निकलता है, है ना, स्वेट, वो स्वेद जैसा हम निकलता है, हमारा शरीर से पानी निकलता है, वैसे भगवान अपना शरीर से पानी निकलकर वो ब्रह्मांड का आधा ब्रह्मांड पूरा कर दिया. उसके बाद भगवान वहां लेट गए. कैसे लेट गए? अनंत शेष तब भगवान की सज्जा बन गए, भगवान का बिस्तरा बनकर अनंत शेष भगवान को सोने की जगह किया. आप जानते हैं भगवान के एक नाम और एक नाम है शेषशायी. शेष नाग की सज्जा में भगवान शयन करते हैं, उसके लिए भगवान का एक नाम है शेषशायी. और भगवान का नाभि कमल से देखिए, एक कमल, भगवान का नाभि से एक कमल का उत्पत्ति हुआ, और उस कमल में ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ, ब्रह्मा जी का प्रकाश हुआ. तो ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में सबसे पहला जीव है, परंतु ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी को तब कुछ पता नहीं चला कि वो कौन है, वो कहां से आए थे और उनको क्या करना चाहिए. तब ब्रह्मा जी बहुत मुश्किल में पड़ गए और बहुत कोशिश किए वो जानने के लिए कौन है, कहां से आए हैं. अंत में ब्रह्मा जी जब निराश हो गए थे बिल्कुल, तब भगवान बांसुरी बजा के ब्रह्मा जी को गायत्री मंत्र प्रदान किए थे, और उस गायत्री को ध्यान करने से ब्रह्मा जी का हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश हुआ. और उस दिव्य ज्ञान का मतलब क्या होता है? दिव्य ज्ञान का मतलब है भगवान को दर्शन और भगवान के धाम का दर्शन. भगवान का दर्शन, जैसे आप कभी किसी को दर्शन करते हैं, केवल क्या उनको ही दर्शन करते हैं, ना कि जो जगह में वो है उस स्थान का भी दर्शन होता है ना. वैसे ही ब्रह्मा जी जब भगवान का दर्शन किए थे, तो उसके साथ साथ भगवत धाम का भी दर्शन हुआ था, और तब ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तुति करना शुरू किया. तो ये स्तुति मैं जो बताया 29 श्लोक से शुरू हुआ था. तो श्लोक हम ये, फिर हम ये भी 28 श्लोक का भी अनुवाद हम थोड़ा सा विचार करेंगे। देखिए इस श्लोक में यह वर्णन किया गया है कि त्रिवेदमय गायत्री के स्मरण द्वारा प्रबुद्ध होकर ब्रह्मा सत्य सागर से परिचित हो गए। सत्य सागर का मतलब आध्यात्मिक जगत का, जगत से उनका परिचय हुआ था। तब उन्होंने समस्त वेदों के सार स्वरूप श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। तो स्तुति कैसे किया ब्रह्मा जी ने, तो हम अब एक साथ गाएंगे। आप गाना चाहते हैं क्या? क्या मैं सिर्फ अकेला गाऊंगा ना, क्या आप भी हमारे साथ गाएंगे? साथ गाएंगे? कौन साथ साथ गाना चाहते हैं, हाथ उठाइए। बहुत अच्छा, थैंक यू। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम् तमहं भजामि। वेणुं कनन्तमरविन्द दलायताक्षम् बरहावतम समसितं बुदसुंदरंगं कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। आलोलो चंद्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नांगदं प्रणयकेलिकलाविलाशम् श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अंगानिजस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय रसुज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपं आद्यं पुराण पुरुषं नवजौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। पंथस्तु कोटिशतवत्सर संप्रगम्यो बायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोप्यस्ति जत्प्रपदसिं न विचिन्त तत्ते गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। एकोप्यसौ रचयितुं जगदंडकोटिं जच्छक्तिरस्ति जगदंड चयाजदंत अंडांतरस्थ परमानुचयांतरस्थं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो कल हम इतना तक ही विचार किया था, इतना तक ही पाठ किया था। तो अब हम 36 श्लोक से आगे शुरू करेंगे। तो 35 श्लोक तक ये श्लोक का अर्थ आपको मालूम हो गया, और ये तो इसीलिए मैं बताया कि ब्रह्म संहिता आप साथ में रखिए ताकि घर में आप पढ़ सकते हैं, है ना। और 36 श्लोक में ये वर्णन किया गया, जद भाव भावित धियो मनुजस तथैव संप्राप्य रूप महिमा सनजान भूषा सुक्तैर जमेव निगम प्रथितै स्तुवन्ति गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इसका अर्थ क्या है? जद भाव, भाव का मतलब क्या है? भाव का मतलब है भक्ति, भाव का मतलब क्या है मनोभाव, जो भगवान के पास जाना चाहता है उसके मनोभाव कैसा होना चाहिए, उनका मन में भक्ति भाव होना चाहिए, है ना। भगवान के प्रति अगर भक्ति ना हो तो हम भगवान के पास कैसे जाएंगे। जो नास्तिक है वो क्या भगवान के पास कभी जा सकते हैं? नहीं। जद भावो भावितो धियो मनुजस्त तथैव, जैसी भाव की द्वारा प्रभावित होकर मनुज, मनुज का मतलब मनु का पुत्र, मनु का पुत्र कौन है? मनु का पुत्र है हम सब मनुष्य आदि, है ना। मनु का पुत्र है हम लोग, तो इसीलिए हम सब मनुष्य हैं। जैसे आदिति का पुत्र का नाम क्या है? आदित्य। दीति का पुत्र का नाम कैसे पुकार बुलाया जाता है? दीति का पुत्र दैत्य। हाँ, तो वैसे मनु, हम सब मनु का पुत्र हैं। ऐसे दनु का पुत्र क्या है? कौन है? दानव। दनु का पुत्र है दानव और मनु का पुत्र है मानव। हम सब कौन है? मनुष्य मानव है। तो ऐसे जद भावो भावितो धियो मनुजस तथैव संप्राप्य रूप महिमा सनजान भूषा। ऐसे भगवान को भक्ति भाव से सेवा करने से हम दिव्य स्वरूप महिमा, मतलब जो भक्त बनता है उसको ख्याति या महिमा बहुत बढ़ जाता है, बहुत फैल जाता है। आप जानते हैं महात्मा कौन है? आपको पता है? महात्मानस्तु मांग पार्थ दैविंग प्रकृति माश्रितः। जो महात्मा है, महात्मा कौन है? जो भगवान को दिव्य प्रकृति का आश्रय ग्रहण किया है, जो भगवान का भक्त है वो है महात्मा। अच्छा, आई टोल्ड देम नॉट टू अलाउ पीपल टू कम आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर पास, यू सी, अदरवाइज पीपल वोंट बिकम सीरियस, यू नो, दे विल जस्ट कम ऑन देयर ओन अकॉर्डिंग टू देयर ओन विम्स। इट्स अ सीरियस मैटर, दैट्स व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग टाइम एंड टाइम अगेन। भाव भक्ति से भावित हृदय वाले मनुष्य अपने उपयुक्त रूप महिमा आसन वाहन तथा आभूषणों को प्राप्त करके वेद कथित मंत्र सूक्त द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। भगवान आप बैठिए वहां, पिक्चर लेने का जरूरत नहीं, अब बैठिए वहां। भाव भक्ति से भावित हृदय वाले मनुष्य अपने उपयुक्त रूप महिमा आसन वाहन तथा आभूषणों को प्राप्त करके वेद कथित मंत्र सूक्त द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का महिमा मैं गोविंद का मैं भजन करता हूं। देखिए, महान कौन बन सकता है? जो भगवान का भक्त है वही महान बन सकता है। भौतिक जगत में सही रूप से ऐसे जो रूप महिमा आसन, आसन का मतलब बैठने का जगह, बैठने का मतलब पद, जो सम्मान प्राप्ति और बड़े पद जो मिलता है, कैसे मिलता है? भगवान का भक्त बनने से ही मिलता है। बाकी जिसका थोड़ा बहुत ये मिल रहा है, कुछ ख्याति, कुछ यश या कुछ सम्मान, कुछ बड़े आसन पद जो मिल रहे हैं, वो क्षण भर के लिए है, वो स्थायी नहीं होगा। विशेष रूप से इस कली युग में जो हो रहा है, कली युग में जो ख्याति मनुष्य का मिल रहा है, जो पुण्यवान नहीं है, जो भगवान को मानते नहीं है, उनको भी मिल रहा है, क्योंकि ये कली युग है। कली युग अधर्म का युग है, इसलिए इस कली युग में ऐसा हो रहा है, परंतु असल में नहीं होना चाहिए। देखिए, विचार ऐसे हम कर सकते हैं, ये संसार के मालिक कौन है? भगवान है। तो ये संसार का पालन कौन करते हैं? भगवान ही करते हैं। तो अगर ये स्थान भगवान का है और भगवान इस स्थान का पालन करते हैं, तो भगवान के अपना आदमी को वहां रखेंगे देखभाल करने के लिए? जैसे आपको एक बड़ा बिजनेस है, तो बिजनेस में क्या आपका अपना आदमी को बड़े पोजीशन देते हैं या क्या आपका शत्रु को देते हैं? अपना आदमी को देते हैं। तो वैसे स्वाभाविक रूप से इस भौतिक जगत में भी जो पद, बड़े पद जो मिलता है, वो भगवान का भक्त को ही मिलता है। इस पृथ्वी में कलियुग के कारण कुछ इधर उधर हो रहा है आजकल, क्योंकि ये अधर्म का युग है। अधर्म का युग में जो अधर्म का जो अनुयायी है, उनको कलि के प्रभाव से उनको थोड़ा बहुत पोजीशन मिल रहा है, परंतु वो स्थायी नहीं रहेगा। ऐसे ये पृथ्वी को छोड़कर और बाकी जितने सारे जगह हैं, जैसे स्वर्गलोक हैं, स्वर्गलोक का राजा कौन है? इंद्र। इंद्र कौन है? भगवान का भक्त है। सूर्यलोक का राजा कौन है? सूर्यदेव है। विवश्वान कौन है? भगवान का भक्त है। चंद्रलोक का भी राजा कौन है? सोमदेव। सोमदेव कौन है? भगवान का भक्त है। ऐसे सारे जो जितने सारे स्थान हैं, उस स्थानों का जो इंचार्ज है, राजा या उन स्थान को पालन करने वाला जो है, वो सब भगवान का भक्त है। तो वही वर्णन यहां किया गया है। जैसे भगवान को भक्ति भाव से, भगवान को भजना करने से रूप, आसन, जान, भूषण, पद, ये सब मिलता है, जो जिनकी कृपा से ये सब मिलता है, उन गोविंद को मैं भजन करता हूं। कौन कह रहे हैं ये वाणी? किनका है? ब्रह्मा जी का है। और ब्रह्मा जी क्या मन से कुछ कल्पना करके लिख रहे हैं? नहीं, भगवान को दर्शन करके ब्रह्मा जी देखिए, ब्रह्मा जी भगवान को दर्शन करने के बाद ये जो है, ये स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी खुद नहीं लिखे हैं, ब्रह्मा जी भगवान का स्तव कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। और बाद में देखिए, जैसे वातावरण में शब्द के रूप में सब कुछ रह जाता है, जो रेडियो वेव्स हैं, ये हमारे विज्ञान में भी ये माना गया है कि सारे जो शब्द जो हैं, वो रह जाता है वातावरण में। तो जो जिसको प्रॉपर एंटेना है, रेडियो क्या करता है, जो शब्द को एंटेना से खींचकर ग्रहण करता है। तो वैसे व्यासदेव जैसे महान व्यक्तियों को, महान पुरुषों को यह क्षमता था कि, या है कि, जो वंदना ब्रह्मा जी ने किए थे उसको व्यासदेव ने लिखकर रखे हैं। अच्छा, श्लोक 37 अब हम विचार करेंगे थोड़ा। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाभिता भी ताभिर्ज एव निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। आनंद चिन्मय रस, आनंद चिन्मय रस, रस का मतलब क्या होता है? जिसकी द्वारा आस्वादन होता है, है ना? जैसे मिठाई का रस होता है, खाने का छह रस होता है, तिक्त, कषाय, नमक, अम्ल, मधुर, ये पांच एक और ठीक है, ये छह रस हैं। इस रस रस के द्वारा आस्वादन होता है। तो ये तो जीवा का रस है, जैसे रसगुल्ला का रस, ये गुलाब जामुन का रस है ना, उसका स्वाद है। परंतु असल में जो रस है वो मन भाव का रस है। वो भाव वो कैसे होता है? भक्ति भाव का रस पांच प्रकार का होता है। वो पांच प्रकार का रस कैसा है? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। शांत रस से जब भगवान के प्रति भक्ति होता है, उसके प्रभाव से परमात्मा के रूप में भगवान को दर्शन होता है। दास्य रस से वैकुंठ में नारायण को दर्शन होता है। और सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये जो तीन रस हैं, ये तीन रस से केवल वृंदावन में श्री कृष्ण का दर्शन होता है। अर्थात ये सख्य मतलब भगवान को साथ दोस्ती करना, भगवान को साथ मित्रता प्राप्त होना, या वात्सल्य पिता माता के रूप में भगवान को दर्शन करना, भगवान के पिता बन जाना या भगवान को माता बन जाना, ये जो भाव ये है वात्सल्य। और मधुर अर्थात प्रेमिक और प्रेमिका के बीच जो संपर्क, वैसा संपर्क जब भगवान के साथ बनता है, ये है मधुर रस। तो ये तीन रस जो हैं, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये तीन रस वैकुंठ में भी नहीं मिलता है। ये तीन रस केवल वृंदावन में ही मिलता है। और इन तीन रसों में से सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम, सबसे उत्कृष्ट है मधुर रस, जिस रस के द्वारा ब्रज गोपियां ने भगवान के साथ अपना प्रेम के संपर्क रचना किए थे। तो ये जो है आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी ताभी स्ताभीर ज एव निज रूप तया कला भी, और गोलोक एव निवसती। वो जो भगवान है श्री कृष्ण, उन्होंने कहां विराज करते हैं? गोलोक में। गोलोक एव निवसती परंतु अखिलात्म भूत, गोलोक में उन्होंने विराज करते हैं, पर उन्होंने हर प्राणी के, हर जीव के हृदय में भी विराजमान है। अखिल मतलब सारे, अखिल मतलब शब्द का अर्थ है समस्त, और भू अखिल आत्मभूत, आत्मभूत का मतलब हृदय में, हर जीव के हृदय में, हर प्राणी के हृदय में भगवान विराजमान है, भगवान विराज कर रहे हैं। देखिए भगवान तो गोलोक में विराज कर रहे हैं, गोलोक वृंदावन में, जहां अपना भक्तों ने उनके साथ सख्य, वात्सल्य और मधुर रस के द्वारा प्रेम के संपर्क रचना किए हैं। फिर भी वही भगवान हर व्यक्ति के हृदय में भी विराजमान है। आपका हृदय में भगवान विराजमान है? है ना, ये मानते हैं ना? भगवान कहां है? भगवान कितनी दूर है? भगवान के बहुत दूर है या भगवान बहुत नजदीक है? भगवान हमारा सबसे नजदीक है, भगवान से नजदीक और कोई नहीं है। तो देखिए भगवान हमारा कितना निकट है, भगवान हमें कितना प्यार करते हैं, और भगवान को प्यार करने का इतना सुंदर मौका हमें मिला है, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए या नहीं? है ना, देखिए भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का इतना सुंदर एक अवसर मिला है, तो इसका सदुपयोग हम करेंगे या नहीं? ये विचार तो हमको करना पड़ेगा। तो जो अपने धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति 64 कला युक्त लादिनी रूपा श्री राधा तथा उनके ही शरीर के विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं, जो कि उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रस से स्फूर्त एवं पूरित रहती हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। अच्छा, यहां एक शब्द का प्रयोग हुआ है, लादिनी रूपा। लादिनी रूपा श्री राधा, लादिनी का मतलब क्या है? भगवान का जो तीन शक्ति हैं, भगवान का अनंत शक्ति है, भगवान का शक्ति अंतहीन है, अनंत है, फिर भी वो सारे शक्ति तीन कोटि में उसका विचार हुआ है, उसका डिवीजन हुआ है, विभाग हुआ है। वो तीन शक्ति हैं, संधिनी, संबित और लादिनी। संधिनी शब्द शक्ति से सत या स्थिति होता है, जो स्थिति जो है वो संधिनी शक्ति का प्रकाश है। चेतना जो है वो संबित शक्ति का प्रकाश है और आनंद लादिनी शक्ति का प्रकाश है। आप जानते हैं भगवान सच्चिद आनंद है। हम ये विचार किया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, सत चित आनंद। सत मतलब स्थिति, चित मतलब चेतना और आनंद। तो ये जो तीन है, ये तीन शक्ति जो है, इन तीन शक्ति का प्रकाश संधिनी, संबित और लादिनी रूप में हुआ। लादिनी शक्ति के द्वारा भगवान अपना सारे आनंद आस्वादन करते हैं और ये लादिनी शक्ति का मूर्तिमती प्रकाश है श्रीमती राधा रानी। तो इसीलिए यहां बताया गया, और राधा रानी सारे गुण राधा रानी में विराजमान है, समस्त गुण 64 गुण में विस्तार हुआ है। 64 गुण है, ये आप देख सकते हैं यहां। मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूं। ये 64 गुण जो है वो है गीत, वाद्य, नृत्य, नाट्य, आलेख्य, विशेष कच्छेद्व, रंगों से मुख तथा देह पर श्रृंगार की कला, तंडुल कुसुम्बली विकार, पुष्पास्तरण। ऐसे 64 गुण, ये सारे गुण श्रीमती राधा रानी में पूर्ण रूप से विराजमान है। तो उसी के लिए राधा रानी है कल का यहां 64 कला युक्त। उसी लिए राधा रानी का और एक नाम है कलावती। सारे कलाएं राधा रानी में पूर्ण रूप से प्रकाश हुआ है। कलायुक्त, 64 कलायुक्त लादिनी रूपा श्री राधा तथा उनके शरीर के विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करते भगवान वृंदावन में क्या करते हैं? वृंदावन में भगवान अपने भक्तों के साथ लीला विलास करते हैं। वो लीला वृंदावन में तीन रूप से होता है, एक सखियां के साथ, ब्रज गोपिया के साथ मधुर रस में, पिता माता या गुरुजनों के साथ वात्सल्य रस में, और अपने गोप सखाओं के साथ सख्य रस में। तो वृंदावन में गोप सखा है कृष्ण का माता पिता या गुरुजन है, और वृंदावन में ब्रज गोपियां हैं, उनके साथ भगवान नित्य लीला विलास करते हैं। दिन भर भगवान ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हैं और रात को गोपिया के साथ नाचते हैं। तो ऐसे भगवान नित्य लीला विलास करते हैं वृंदावन में। अच्छा, अब 38 श्लोक। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतस सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जं श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेम का मतलब प्यार और अंजन का मतलब क्या है? अंजन काजल। तो काजल आंखों में काजल लगाने से क्या होता है? दृष्टि फैल जाता है, दृष्टि और भी बढ़ जाता है, दृष्टि शक्ति, उसी लिए काजल लगाया जाता है। बल्कि यहां एक विशेष प्रकार की काजल की वर्णन हुआ है, वो कौन सी काजल? प्रेम रूप काजल। जब प्रेम रूप काजल के द्वारा हम दर्शन करते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, भक्ति भाव से प्रेम रूप अंजन के अंजन से अंजन के द्वारा रंजित दृष्टि से जब हम भगवान को दर्शन करते हैं, तब कौन करते हैं? संत। संत का मतलब क्या है? संत का मतलब है भगवान का भक्त। महात्मानस्तु मांग पार्थ दैविंग प्रकृतिम आश्रितः। संत, संत का मतलब होता है जो भगवान का भक्त है। तो वो संत भक्त प्रेम रूप अंजन के द्वारा रंजित आंखों से, भक्ति भाव से, पूर्ण हृदय से जब भगवान को उन्होंने हर समय, संत सदैव, सदैव का मतलब हर समय भगवान को दर्शन करते, कहां दर्शन करते हैं? हृदय में। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। और कैसे देखते हैं? जंग श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। भगवान का वो रूप कैसी है? श्याम सुंदर रूप है। श्याम भगवान का कांति, भगवान का शरीर का कांति श्याम है, मतलब बादल का घन घटा की तरह। नवनीरद निंदित कांति धरम रस सागर नागर भूपवरम। तो ये देखिए, ये है भगवान का रूप। कैसे भगवान को दर्शन करते हैं? जंग श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। और ये रूप अचिंत, चिंता के भी अतीत गुणों से गुण स्वरूप है। अचिंत गुण स्वरूपम, ये रूप सारे गुणों से भी युक्त है। अचिंत गुण स्वरूपम और गोविंदम, उस गोविंद को मैं भजन करता हूं। तो अगर हम भगवान को दर्शन करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? आंखों में काजल लगाना पड़ेगा। कौन सी काजल? प्रेम, प्रेम की काजल। मतलब भगवान के प्रति हमारा प्यार जब सही रूप से प्रकाश होता है तब हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं। देखिए, भगवान तो हृदय में विराजमान है, परंतु मुश्किल हमारा ये हो गया कि हम भगवान को प्यार ना करके और सारे वस्तुओं को और सारे व्यक्तियों को प्यार करते हैं। ये हमारा मुश्किल हो गया है ना। ये प्रेम जो है ये भगवान को ही अर्पण करने को था, परंतु भगवान को भूल जाने के कारण हम इस भौतिक जगत में सब वस्तु के प्रति या सब सारे व्यक्तियों के प्रति हम ये प्रेम को अर्पण कर रहे हैं, और उसके कारण हमें ये भौतिक बंधन में हम गिर पड़े हैं, भौतिक बंधन में हम फंस गए हैं। और इस भौतिक जगत में हमें क्या मिल रहा है? भौतिक जगत में आनंद मिल रहा है? हम आनंद चाहते हैं परंतु आनंद मिल रहा है क्या? नहीं। हम प्यार करते हैं, देखिए मां अपना बेटा को प्यार करते हैं, पिता अपना पुत्र को प्यार करते हैं, पति अपना पत्नी को प्यार करते हैं, पत्नी अपना पति को प्यार करते हैं, भाई बहन को प्यार करते हैं, बहन भाई को प्यार करते हैं। वैसे कितने हमारे प्यार हैं, परंतु उस प्यार से क्या हमें आनंद प्राप्ति हो रहा है? नहीं। जब हमारा प्यार के जो आस्पद प्रेमास्पद जो है, जब वो उसका कुछ हो जाता है, हमारा प्रेम जब टूट जाता है, तब आनंद की जगह हमें कष्ट मिलता है ना? कितना कष्ट होता है जब हमारा अपना प्यारे कोई जब उसका अगर चले जा कहीं चला जाता है, या हमको त्याग देते हैं, या उसका वो मृत्यु होता है, तो हम आनंद की जगह हमें क्या मिलता है? हमें कष्ट मिलता है। परंतु जब हम हमारा प्रेम भगवान को अर्पण करते हैं, तब क्या होता है? यहां आप कौन भगवान को प्रति आपका प्रेम अर्पण करने का कोशिश कर रहे हैं? हाथ उठाइए कृपा करके। तो ये जो कोशिश आप कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? इससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है। और हर रोज ये इस प्यार अर्पण करने से हमारा दिल दिल में आनंद हो रहा है, आनंद बढ़ रहा है ना? तो देखिए, इससे ही हमें पता चलता है भगवान के प्रति हमारा प्रेम अर्पण करने से क्या फायदा होता है। हम सब आनंद चाहते हैं, परंतु आनंद प्राप्ति के उपाय क्या है? आनंद प्राप्ति के उपाय है भगवान के प्रति अपना प्रेम को अर्पण करना, भगवान को प्यार करना है। इसका मतलब ये नहीं हम भगवान को प्यार करेंगे और बाकी सबको हम द्वेष करेंगे, बाकी सबके प्रति हमारा विद्वेष रहेगा। नहीं, जब हम भगवान को प्यार करते हैं, तब हम ये भी देखते हैं कि सब भगवान का ही अंश है, तो स्वाभाविक रूप में उनके प्रति भी हमारा प्रेम का प्रकाश होता है। जो भगवान को प्यार करते हैं, वो सबको प्यार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सब कोई भी भगवान का ही अंश है। जैसे आप ये किसी को प्यार करते हैं, तो उसका सारे अंश जो है उसको भी प्यार करते हैं, है ना? ऐसा नहीं आप उसको प्यार करते हैं बल्कि उसका अंगली को प्यार नहीं करते हैं। ऐसा होता है क्या? मैं आपको प्यार करता हूं परंतु आपका अंगली से मेरा द्वेष है? नहीं। ये अंग्रेजी में एक ये है, कहावत है, लव मी लव माई डॉग। अगर तुम हमको प्यार करते हो तो तुम मेरा कुत्ता को भी प्यार करोगे। है ना? क्योंकि जिसको हम प्यार करते हैं, जो उसका है, उसको भी हम प्यार करते हैं। तो विशेष रूप से जब हम भगवान का अंश के रूप में सबको दर्शन करते हैं, तो उनके प्रति प्रेम तो स्वाभाविक रूप से ही प्रकाश होता है। तो जो स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, जिनके अनेक अनेक अचिंत गुण है, तथा जिनका शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से रंजित भक्ति के नेत्र द्वारा अपने अंतर हृदय में दर्शन करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। समझे ये? देखिए कितना सुंदर रूप से ब्रह्मा जी भगवान का स्तव कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। अच्छा, अब 38 श्लोक में वर्णन हुआ है, नहीं 39 श्लोक में रामादिमूर्तिषु कलानि अमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्णस्वयं समभवत् परमपुमाञ्जो बिन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। श्री रामचंद्र कौन है? श्री रामचंद्र भगवान का अवतार है। राम आदि, आदि का मतलब क्या है? इत्यादि। राम चंद्र जैसे रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। ये राम, नृसिंह, वराह, कूर्मा, ये जो जितने सारे अवतार हैं, उन्होंने भगवान का अंश और अंश का अंश कला है, स्वांश या कला है। कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोद् भुवनेषु किंतु, ऐसे भगवान नाना अवतार प्रकाश किए हैं इस भुवन में, इस भौतिक जगत में। भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमांजो, परंतु श्री कृष्ण ही परम ईश्वर भगवान है, जो पहला श्लोक में हम विचार किए हैं। कौन सी श्लोक क्या था पहला श्लोक? ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसका मतलब अवतारों का भी कारण श्री कृष्ण है। नाना अवतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमांजो। तो इस सिलसिले में हम ये विचार कर सकते हैं, आपको दशावतार स्तोत्रम आपको मालूम है? दस अवतार का स्तोत्र है जो गीत गोविंद में कवि जयदेव ने बहुत साल पहले रचना किए थे। वहां जैसे कहा गया है कि प्रलयोपायोधि जले धृतवान सिवेदम विहित बहित्र चरित्रमखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। भगवान मीन के रूप में या मछली के रूप में मत्स्यावतार आए थे। तो केशव जय जगदीर केशव धृत मीन शरीर। भगवान देखिए ये जो कोने में जो है ये मछली का रूप, ये एक अवतार है। उसके बाद कूर्म रूप भगवान, इसके बाद वराह रूप, खितिरति विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धरण किन चक्र गरिष्ठे केशव धृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे। बसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शोषिनी कलंक कलेव निमग्ना केशव धृत शूकर रूप जय जगदीश हरे। भगवान वराह रूप या शुकर रूप क्यों लिए थे? ये धरती जब गिर गया था पताल लोक में, तो ये पृथ्वी को उद्धार करने के लिए भगवान वराह देव के रूप में आकर पृथ्वी को उद्धार किए थे। उसके बाद नरसिंह रूप, ये तो हम हर रोज गाते हैं, आप सबको पता है शायद। और वो कैसी है, किसको मालूम है, किसको याद है? ओके, एट द बैक से ओके। तबो करो कमलो बड़े नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यक शिपु तनु भृंगम केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। तो ये नरहरि रूप कौन ग्रहण किए थे? केशव। तो ऐसे उसी लिए ये बीच में भगवान श्री कृष्ण और चारों तरफ ये अवतार, तो नरसिंह रूप के बाद बामन देव के रूप में आए थे। छलयशी विक्रमने बलिम अद्भुत बामन, बलिदेव को छल करने के लिए भगवान बामन देव के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उसके बाद परशुराम क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापम, ये क्षत्रिय ने जब बहुत पाप काम करना शुरू किया तो भगवान परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर क्षत्रिय को 21 बार सारे पृथ्वी को निक्षत्रिय किए थे, सारे क्षत्रिय को संहार किए थे। उसके बाद श्री रामचंद्र रावण को संहार किए थे। और अष्टम अवतार में बलराम, कृष्ण नहीं, कृष्ण है स्वयं भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ये विचार भागवत में भी हुआ है, जैसे सारे अवतारों को वर्णन करने के बाद ये बताया गया, एते चांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण अवतार नहीं, श्री कृष्ण है अवतारी। इसीलिए अष्टम अवतार में बलराम को वर्णन हुआ है, नवम अवतार में बुद्ध देव, और दशम अवतार है कल्कि। कल्कि जो आज से लगभग 427,000 वर्ष के बाद आएंगे। तो यहां भी उसका वर्णन हुआ है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन। ये सारे अवतार भगवान का कला है, भगवान का श्री कृष्ण का अंश का अंश या अंश का अंश है। अंश नाना अवतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमांजो, परंतु श्री कृष्ण ही है परमेश्वर भगवान। जिन्होंने श्री राम नृसिंह बामन इत्यादि विग्रहों में नियत संख्या की कला रूप में स्थित रहकर जगत में विभिन्न अवतार लिए, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। अब श्लोक 40, जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश शेष वसुधादि विभूति भुन्नम तद् ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जस्य प्रभा प्रभवतो, प्रभा का मतलब ज्योति, जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है, तथा करोड़ों ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निरवच्छिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, ये प्रभा ज्योति क्या है, ब्रह्म ज्योति जो उपनिषद में वर्णन किया गया है, वो ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान का अंगद ज्योति। जैसे आप देख रहे हैं श्री कृष्ण का शरीर से जो ज्योति निकल रहा है वही है ब्रह्म ज्योति, और उस ज्योति से और वो ज्योति है करोड़ों ब्रह्मांडों को अनंत विभूतियां के रूप, सारे ब्रह्मांड इस जगत, ऐसे उपनिषद में वर्णन हुआ है कि ब्रह्म ही सब कुछ का श्रोत्र है, परंतु ब्रह्मनो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान कह रहे हैं कि उस ब्रह्म का भी प्रतिष्ठा मैं हूं। जैसे उपनिषद में वर्णन हुआ है, सर्वं खलिदं ब्रह्म, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, जो कुछ प्रकाश हुआ है सब ब्रह्म से ही प्रकाश हुआ है, ब्रह्म ज्योति से इसका प्रकाश हुआ है। और उस ब्रह्म ज्योति भी, ब्रह्म ज्योति का प्रतिष्ठा कौन है? परम ब्रह्म। ब्रह्म है और उसके परे है परम ब्रह्म। परम ब्रह्म कौन है? देखिए गीता में भगवान को वर्णन करते हुए अर्जुन क्या कह रहे हैं, भगवान को दर्शन करने के बाद, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान। तो भगवान है परम ब्रह्म, ब्रह्म का भी श्रोत्र। जस्स प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, जगदंड मतलब ब्रह्मांड, कोटि मतलब करोड़ों, कोटिश शेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। उस गोविंद को मैं भजना करता हूं। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और आप क्या बोल रहे हैं? हाँ? आप सब क्या बोलेंगे? हम सब भी वही बोलेंगे, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंद को भजना कर, भजन करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, है ना? अब श्लोक 41, माया हि जस्स जगदंड शतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषय वेद वितायमाना सत्यावलंबी पर सत्य विशुद्ध सत्वं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सत्व रज तथा तमो रूप त्रिगुणमयी एवं जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी माया, जिनकी अपरा शक्ति है। माया कौन है आप जानते हैं? माया, माया महामाया, महामाया है दुर्गा, योग माया आध्यात्मिक जगत में है और इस भौतिक जगत में उन्होंने ही महामाया के रूप में, और वो माया कौन है? माया भगवान का शक्ति है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरक्तया, भगवान गीता में कह रहे हैं कि ये माया दैवी माया है, ये मेरे ही माया है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरक्तया, और वो माया कैसी है? त्रिगुणमयी। त्रिगुणमयी का मतलब तीन गुण है माया का। वो तीन गुण क्या है? सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये सत्य रजो और तमोगुणों के द्वारा ये सारे संसार माया परिचालना कर रही है। जैसे आप ये देख रहे हैं, स्वर्गलोक का देवताओं ने सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण का, तमोगुण के द्वारा हमें हमें नियंत्रण कर रहे हैं। गुण का मतलब क्या है? रस्सी, है ना? तो ऐसे जैसे पपेटियर, पपेटियर का हिंदी क्या है? पुतुल, कठपुतली को जो नचाते हैं, क्या बोलते हैं? कठपुतली वाले, नचाने वाले, वो कैसे करते हैं? रस्सी से करते हैं ना। तो ऐसे भी तीन गुण के द्वारा प्रकृति हमको नचा रहे हैं। हम सब काठपुतली जैसे हैं। प्रकृते क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। ये इस प्रकृति में सब कुछ गुण और कर्म के द्वारा संपादित हो रहा है। प्रकृते क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः, जो कुछ हो रहा है इस भौतिक जगत में, हम जो कुछ कर रहे हैं वो गुण और कर्म की द्वारा ही उसका हम नियंत्रित हो रहे हैं, परंतु अहंकार के द्वारा बीमूढ़ होकर हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं। प्रकृति क्रियमानानी गुणई कर्मानी सर्व, तो वही यहां बताया गया है जो माया जो इस भौतिक जगत को नियंत्रण कर रही है तीन गुणों के द्वारा, वो माया भगवान का ही शक्ति है, ये कृष्ण का ही शक्ति है। तो कृष्ण को क्या करना चाहिए, गोविंद को क्या करना चाहिए, हाँ क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए, है ना, कर रही हो बहुत अच्छा से, ओके वेरी गुड वेरी गुड। माया ही जस्य जगदंड शतानि सूते त्रैगुण तद विषय वेद विताय माना सत्यावलंबी पर सत्यं विशुद्ध सत्वं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सत्व रज तथा तम रूप त्रिगुणमयी एवं जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी माया, जिनकी अपराशक्ति है, भगवान का दो शक्ति है, पराशक्ति और अपराशक्ति। तो ये जो महामाया जो है ये भगवान का अपराशक्ति है, परंतु जोग माया भगवान का पराशक्ति है। अपरयामित स्तन्यांग प्रकृति विद्धि में पराम, ये भौतिक अपरा ये भौतिक जगत अपराशक्ति है, परंतु इस भौतिक जगत की परे एक पराशक्ति है, एक उत्कृष्ट शक्ति है, प्रकृति है। उन्हीं सत्वाश्रय रूप पर सत्व निबंधन विशुद्ध सत्व स्वरूप आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। अच्छा श्लोक 42, आनंद चिन्मय रसात्मतया मनोसु जप प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्या लीला इतेन भुवनानि जयत्तजश्रम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो स्मरणकारी प्राणियों के मनों में नित्य आनंद चिन्मय रस स्वरूप से प्रतिफलित होकर निज लीला विलास द्वारा निरंतर समस्त भौतिक जगत को वशीभूत करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो आनंद यहां भी एक आनंद चिन्मय रस का वर्णन हो रहा है, जो मैं पहले विचार किया याद है, आनंद चिन्मय रस क्या है, वृंदावन में जिस भाव से भक्तों लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और वृंदावन में तीन रस प्रधान है, प्रमुख है, वो तीन रस क्या है, यस वेरी गुड, सख्य वात्सल्य और मधुर, और वो तीनों में से सबसे उत्तम कौन सी है, रस मधुर रस। तो मधुर रस में ब्रज गोपिया के साथ भगवान लीला विलास करते हैं, और इस लीला के द्वारा भगवान निरंतर समस्त भौतिक जगत को वशीभूत करते हैं, भगवान अपना लीला के द्वारा ही जगत को वशीभूत करके रखे हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। श्लोक 43, गोलोको नामनि निज धामनि तले च तस्या देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभाव निचया विहिताश्च जेना गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोलोको नामनी निज धामनी, तो भगवान का अपना धाम कौन है, गोलोक, और गोलोक का नीचे क्या है, हाँ हरिधाम, हरिधाम का मतलब वैकुंठ, वैकुंठ लोग जहां नारायण चतुर्भुज रूप से विराज करते हैं, नारायण और गोविंद में क्या कोई अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। केवल भक्त के साथ लीला विलास का ही भेद है। वैकुंठ में भगवान परम प्रभु हैं और बाकी सब दास के रूप में उनका सेवा कर रहे हैं, और वैकुंठ वृंदावन में सख्य वात्सल्य और मधुर रस में भगवान के साथ संपर्क स्थापन करने का अवसर मिलता है। ये है श्री कृष्ण और नारायण के बीच अंतर। जैसे कृष्ण और नारायण के बीच क्या अंतर है? एक ही व्यक्ति है, कृष्ण ही भगवान है, नारायण भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है, राम भी भगवान है, नृसिंह भी भगवान है, बराह भी भगवान है, कूर्म भी भगवान है, बामन भी भगवान है, सब भगवान है। एक ही व्यक्ति है, एक ही पुरुष, आदि पुरुष स्वयं भगवान। परंतु अंतर कैसा है? अंतर ऐसा है, जगह जगह में लीला भेद का अंतर है। लीला भेद का अंतर कैसा? जैसे हाई कोर्ट का जज है, जो कोर्ट में उनको कैसे दिखाई देता है? जज के रूप में, है ना, न्यायाधीश, और सब वहां माय लॉर्ड करके उनको संबोधन करते हैं। परंतु जब क्लब में जाते हैं, जज साहब जब क्लब में जाते हैं, तो उनका दोस्तों ने उनको कैसे संबोधन करते हैं? माय लॉर्ड बोलते हैं? नहीं, वहां उनको जस्टिस सो एंड सो, अपना दोस्त की तरह उनको देखते हैं। और जब उन्हें अपने घर में जाते हैं, तब वहां क्या आपको उनको माय लॉर्ड को कह के संबोधन किया जाता है ना, क्या जस्टिस सो एंड सो कह के संबोधन किया जाता है? वहां मां उसका अपना नाम से पुकारता है, ए बच्चे कैसे हो, कहां क्या कर रहा था तुम, और उनका पत्नी उनको पति के रूप में संबोधन करते हैं, उनका पुत्र पिता के रूप में संबोधन करते हैं। व्यक्ति एक ही है ना, हाईकोर्ट में उन्होंने जज है, क्लब में दोस्त है, और घर में पिता है, पति है या पुत्र है। वैसे ही भगवान का भगवान और विभिन्न अवतार में यही अंतर है। तो वैकुंठ में भगवान नारायण और गोलोको नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। तो गोलोक का नीचे क्या है? हरिधाम। हरिधाम का नीचे क्या है? वैकुंठ का नीचे महेश धाम। कल तुम पूछ रही थी पारुल, कैलाश कहाँ है, तो अब पता चला है, हरिधाम के वैकुंठ के नीचे है कैलाश धाम, शिव जी का धाम, महेश धाम, देवी महेश, और उसका नीचे शिव जी का स्थान के नीचे है इस भौतिक जगत, जो जिसे देवी धाम कहा जाता है। देवी कौन है? दुर्गा देवी, महामाया, महामाया का धाम है ये इस भौतिक जगत, जहां आप देख रहे हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का चालना परिचालना कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी। तो देवी महेश हरिधाम श्रुतेषु तेषु तेते प्रभाव निचया विहिताश्च जेन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उनके नीचे स्थित क्रमश वैकुंठ लोक, हरिधाम, महेश लोक तथा देवी लोक नामक विभिन्न धामों के विभिन्न स्वामियों को यथा योग्य अधिकार प्रदान किया है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। इसके बाद श्लोक 44, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छाये वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि जस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधनकारिणी चित शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती हैं, जिसकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो दुर्गा देवी क्या कौन है? दुर्गा देवी भगवान का छाया स्वरूप ही नहीं है, अपराशक्ति है, माया शक्ति। और दुर्गा देवी क्या करती है? सृष्टि, स्थिति, प्रलय, इस भौतिक जगत का सृष्टि, भौतिक जगत का पालन और भौतिक जगत का संहार कारिणी। और ये प्रत्यक्ष रूप में दुर्गा देवी करती हैं, परंतु असल में सृष्टि, स्थिति और प्रलय का करने वाला है ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। सृष्टि कार्य ब्रह्मा जी ने करते हैं, पालन कार्य विष्णु ने करते हैं और संहार या प्रलय शिव जी ने करते हैं। बल्कि यद्यपि माया या दुर्गा इस भौतिक जगत का मालकिन है, उसके कारण इस भौतिक जगत का सृष्टि, स्थिति और प्रलय की कारण भी दुर्गा देवी ही है। और वो दुर्गा देवी कौन? और दुर्गा देवी जो कुछ करते हैं कैसे करते हैं? भगवान की इच्छा के अनुरूप करते हैं। इच्छानुरूप जस चेष्टते सा, भगवान की इच्छा के अनुसार दुर्गा देवी अपना कार्य करती हैं। तो उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। और श्लोक 45, क्षीरं यथा दधि विकार विशेष जोगा संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतो ज संभूतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादि पुरुषम तमहं भजामि। जिस प्रकार दूध, खटाई या जामनादि के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध के वह न तो समान होता है और न ही उससे पृथक होता है, उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो संभू रूप में परिणत हो गए हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो यहां हम देखते हैं भगवान के साथ शिव जी का क्या संपर्क है। जैसे दूध जैसे दही बन जाता है, तो दूध और दही में कोई अंतर है? नहीं, परंतु फिर भी अंतर है। जैसे दूध दही बन सकता है, दही दूध नहीं बन सकता है। और ये भगवान क्यों शिव जी के रूप में, शंभू के रूप में प्रकाश होते हैं? कोई विशेष कार्य संपादन करने के लिए। वो विशेष कार्य क्या है? एक विशेष कार्य तो है संहार कार्य, ये भौतिक जगत का प्रलय करने शिव जी के द्वारा होता है। और एक कार्य है विशेष कार्य, और जो है वो कार्य क्या है? देखिए, भगवान भौतिक जगत के साथ कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये भौतिक जगत भगवान का बहिरंगा शक्ति है। तो बहिरंगा शक्ति होने के कारण भगवान प्रत्यक्ष रूप में इस भौतिक जगत के साथ संपर्क नहीं रख सकते हैं। तो उसके कारण उन्होंने शिव जी के रूप में प्रकाशित होकर इस भौतिक जगत के साथ संपर्क स्थापन करते हैं। अब देखिए, भौतिक जगत का स्वरूप कौन है? भौतिक जगत का प्रकाश किसके रूप में हुआ है? दुर्गा के रूप में, माया के रूप में। अच्छा, और माया का पति कौन है? शिव जी। तो शिव जी माया, शिव जी के रूप में भगवान माया के साथ, महामाया के साथ, देवी के साथ संपर्क स्थापन करते हैं। और ये संपर्क जो है वो कैसी संपर्क है, माता के साथ पिता के संपर्क कैसी होती है, संतान उत्पादन के लिए। इस भौतिक जगत में हम सब जीव जो आए हैं, हम माता की गर्भ में हम सब आए हैं, है ना। जीवात्मा जो सब हम आए कहां से, हम सब आए हैं आध्यात्मिक जगत से, भगवत धाम से हम आए हैं, परंतु कहां आए हैं, इस भौतिक जगत में आए हैं, माया की जगत में आए हैं। कैसे आए हैं, शिव जी के माध्यम हम आए हैं। तो इसीलिए भगवान शिव जी के रूप में इस माया के साथ संयोग स्थापन कर रहे हैं, या भगवान शिव जी के रूप में, भगवान शंभु के रूप में, ज शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात्। ऐसे हम कहते हैं भगवान परम पिता है, परंतु असल में परम पिता हमारा कौन है, शिव जी है हमारा परम पिता। हम सब शिव जी के माध्यम इस भौतिक जगत में आए हैं, तो उसके लिए जब हम आध्यात्मिक जगत में वापस जाएंगे तो शिव जी के अनुमति लेकर ही हमको वहां जाना पड़ेगा। उसके कारण वैकुंठ के द्वार संभाल रहे हैं कौन, आपको मालूम है, वैकुंठ के द्वार भी शिव जी ही संभाल रहे हैं, ताकि कोई अयोग्य व्यक्ति वैकुंठ में प्रवेश न कर पाए। तो ये शिव जी है, भगवान का ही गुणावतार, जिसका वर्णन यह, क्षीरंग यथा दधि विकार विशेष जोगात संजायते नहीं तत पृथगस्ति हेतु। जैसे खीर और दही, दूध और दही में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही भगवान और शिवजी में कोई अंतर नहीं है। वैष्णवानां यथा शंभु, शिवजी सारे वैष्णवों में से परम वैष्णव या सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के रूप में उनका गणना हुआ है। जिस प्रकार दूध खटाई या जामनादि से संयोग से, जामनादि के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध के वो न तो समान होता है और न ही उससे पृथक होता है, उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणत हो गए हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। हरे कृष्ण। तो आज हम यहां तक ही पाठ करेंगे। तो ये जो पाठ हो रहा है, ये क्या मैं तो देखता हूं कि बहुत जल्दी हो रहा है। मैं तो चाहता हूं कि एक एक श्लोक को मैं एक एक दिन क्या, एक एक श्लोक को एक एक महीना हम विचार करेंगे। इतना ही गहरा है ये सारे विषय, परंतु तीन दिन में इसको हम खत्म करना चाहते हैं, खत्म मतलब कवर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे कुछ जानकारी हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, समझ में कोई मुश्किल नहीं हो रहा है? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है या? ओके पारू, गिव द माइक्रोफोन। गिव इट टू।
हरे कृष्ण गुरु महाराज। गुरु महाराज, ब्रह्म संहिता पृथ्वी पे कैसे आई? मतलब ब्रह्म संहिता चैतन्य महाप्रभु ने आदिकेशव मंदिर से ली, आदिकेशव मंदिर में कहाँ से आई?
आदिकेशव मंदिर दक्षिण भारत में है।
नहीं, वहाँ उसमें ब्रह्म संहिता शास्त्र आया कैसे?
अच्छा, ऐसे हमारे मंदिर में शास्त्र का ये लिपि रहता है, हर पुराना मंदिर में ऐसे रखा जाता है।
मतलब किस वेद व्यास जी ने लिखी है क्या?
हाँ, ये जो मैं कह रहा था कल, कि ब्रह्म संहिता का 100 अध्याय है और 100 अध्याय में से केवल हमें पांचवा अध्याय ही हमें मिला है, महाप्रभु ने उसको उसका उद्धार किया, बाकी स्वर्ग लोक में होगा।
और गुरु महाराज, गोलोक वृंदावन में जो पेड़ पौधे जानवर सब लोग सच्चित आनंद स्वरूप में ही है, हाँ, मतलब सब नित्य है, हाँ, और वहाँ पे मतलब रात और सुबह होती है क्या?
हाँ, वहाँ रात गोलोक वृंदावन में सुबह और रात होता है, परंतु वो सूरज की गति के अनुसार नहीं होता है, वहाँ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। हाँ, जैसे भगवान का जब इच्छा होता है, हाँ, कि जैसे भगवान दिन के वक्त गाय चरा रहे हैं, हाँ, तो अचानक भगवान का इच्छा हुआ कि मैं अब गोपियां का साथ नाचूंगा, तो उसी समय जोग माया, हाँ, वो रात बना देती है और आकाश में पूर्ण चंद्रमा आ जाती है, हाँ, और कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, गोपियां आते हैं, सब नाचने शुरू करते हैं। वैसे वहां सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है।
थैंक यू गुरु।
हरे कृष्ण। ना, इसके उनके बाद लेट ही मार, उसके बाद तुमको देंगे।
हरे कृष्ण महाराज, आपने जो भक्ति भाव रस के बारे में बताया था, उसमें जो शांत रस है उसका क्या महत्व था?
शांत
रस का क्या महत्व था?
शांत रस का मतलब है जिस रस में भगवान को मानते हैं, भगवान को ध्यान करते हैं, परंतु भगवान के साथ कोई संपर्क नहीं बनता है। जैसे शांत का मतलब एकदम स्थिर है, कोई उलझन नहीं है, ना तो भौतिक जगत का उलझन, ना तो आध्यात्मिक जगत का उलझन, तो वो है शांत। और उसके बाद जो दास्य है, दास्य में उलझन है, एक्टिविटीज है, भगवान को सेवा हो रहा है, भगवान है वहां प्रभु और हम सब भगवान के दास, तो ऐसे उसके बाद दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर।
हरे कृष्ण गुरुजी, मैं इस ब्रह्म संहिता से थोड़ा अलग प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमने टीवी पे देखा और सुना भी है कि सृष्टि का निर्माण ओम से हुआ है या कृष्ण से हुआ है?
अच्छा, यहाँ जो पाठ हो रहा है वो ब्रह्म संहिता के ही पाठ हो रहा है। हाँ, टीवी में आप क्या देखे हैं, क्या सुने हैं, वो तो दूसरी बात है, यहाँ जो हो रहा है वो ही आप समझने का कोशिश कीजिए।
थैंक यू।
क्योंकि उल्टा सीधा तो बहुत सारे आदमी बहुत कुछ कहते हैं, हाँ, तो उसको अब अगर हम विचार करते चलेंगे, हाँ, तो सारे साल खत्म हो जाएगा। ओम से हुआ है इसका वो उसको सही है, परंतु समझना पड़ेगा ओम क्या है। ओम भगवान का ही प्रतीक है, शब्द ब्रह्म है ओम, हाँ, तो ये मैं बोला पहले जो ब्रह्म से ही जगत का उद्भव हुआ है, तो उसके विचार से हाँ ओम ही ये सृष्टि का उत्पत्ति का कारण है, परंतु ये उस विचार में हम अब नहीं जाएंगे, जो विचार हम यहाँ कर रहे हैं उसको समझने का कोशिश कीजिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि ब्रह्मा जी जो दृश्य श्री कृष्ण का देखते हैं और वर्णन करते हैं, तो उन्होंने उस समय जो बातें कही वो अपने वायुमंडल में वेव फॉर्म में है, तो उस वेव फॉर्म को किस तरह रिसीव कर सकते हैं? हाउ कैन वी रिसीव दैट?
जैसे देखिए, ये वातावरण में शब्द हैं, परंतु हम सुन नहीं रहे हैं। एक रेडियो लगा के जब हम उसको चलाते हैं तब हम वो सुन सकते हैं, है ना?
मगर गुरु
जी, तो ऐसे ही क्यों ये जो एंटेना है रेडियो का जो एरियल है, वो एरियल को उस शब्द को ग्रहण करने का क्षमता है, तो वैसे कोई आदमी को जब वो क्षमता मिलता है तब उन्होंने उसको।
मगर जैसा कि गुरुजी मैंने अभी पढ़ा है, एज फार एज आई एम कंसर्न, जो भी वेव फॉर्म है वो एम्पलीट्यूड उसका जैसे रेजिस्टेंस फेस करता जाती है, तो उसका एम्पलीट्यूड जीरो होता जाता है, तो जैसा कि आपने बताया कि ब्रह्मा जी ने आदि काल में ये सब बातें कही थी, तो अभी तक उसका एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाना चाहिए था।
अच्छा,
तो उसको कैसे रिसीव करें?
हाँ, ये तो ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मा जी ने बताया और बाकी उसको और कुछ चर्चा नहीं हुआ, हा? और उसके बाद हम कर रहे हैं। नहीं, ब्रह्मा जी जब बताया तो बाकी और उसके आसपास में जो थे उन्होंने सुना और उन्होंने उसको फिर और किसी से बताया। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में इस ज्ञान को प्रकाश होता है।
थैंक यू।
हरे कृष्ण हरे राम। स्वामी जी, जिसे साके धाम को गोलोक धाम या बैकुंठ धाम क्या समझा जाए?
हाँ,
साके धाम को गोलोक धाम या बैकुंठ धाम, क्या इन दोनों में से क्या समझा जाए?
आई कुडंट अंडरस्टैंड।
साके धाम को गोलोक धाम या बैकुंठ धाम में से क्या समझा जाए?
साके मतलब
साके धाम।
अयोध्या। अच्छा, नो, अयोध्या वैकुंठ में है। वैकुंठ का ऊपर है अयोध्या।
महाराज जी हरे कृष्ण। ये गायत्री माता जो हैं, उन्होंने गायत्री माता वेद माता हैं, उन्होंने चारों वेद का वेद के बारे में बताया है, पर जो अपनी क्या ब्रह्म संहिता जो है ये भी क्या वेद का ही अंग है क्या?
हाँ,
ब्रह्म संहिता वेद का ही अंग है क्या?
हाँ, ब्रह्म संहिता वेद का ही अंग है। हाँ, वेद का निर्जाश है, वेद का निचोड़ है ब्रह्म संहिता। सारे वेद में ब्रह्मा जी ने जब बताया है, वेद तो ब्रह्मा जी ने ही प्रदान किए हैं।
हाँ,
और उसका जो सार वस्तु जो है वो है ब्रह्म संहिता।
हरे कृष्ण।
दिस बी द लास्ट क्वेश्चन।
हरे कृष्ण महाराज।
यस,
ये अभी लास्ट श्लोक में जो आपने बताया कि भगवान भौतिक जगत में शिव के रूप में आए, तो क्या हमें शिव की स्तुति करना चाहिए?
जरूर, जब शिवजी भगवान का ही अवतार हैं, तो जरूर उनका भी स्तुति करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो हम अब थोड़ा कीर्तन करेंगे। गिव मी द हारमोनियम एंड लेट द हारमोनियम। ए छोटो टेबल आस एन एक्टर, क्विकली गेट दैट। এটা সরিয়ে না। না হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ishwarah Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadir Adir Govindaha Sarvakarana Karanam. श्री श्री ब्रह्म संहिता की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि.